ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोल श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर्षी विद्या सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की। मंगलाचरण में मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, उसी को मिलता है जो उस राह पर चलता है, नहीं तो ना धीरे से मिलेगा ना जल्दी से मिलेगा। धीरे धीरे उसे ही मिलेगा जो रास्ते पर चलेगा। अब आप धीरे धीरे पाना चाहते हो या शीघ्रता से पाना चाहते हो, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मोक्ष अपनी जगह पर है और वह तभी मिल सकता है जब हम रास्ते पर चले। और हमारे जैनाचार्यों ने हमारे लिए उस तत्व को पाने के लिए जो रास्ता प्रशस्त किया है, वह बहुत ही उत्कृष्ट रास्ता उन्होंने बताया। आत्मकल्याण का रास्ता दो तरीके से हो सकता है। सबसे अच्छा हमारा यह तरीका है कि सब कुछ परित्याग करके और निर्ग्रंथ होकर श्रवण का अंगीकार कर लेना, इस श्रवणों का मार्ग सबसे उत्कृष्ट मार्ग है। लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग को अंगीकार करने में असमर्थ हो, उनके लिए भी तो कोई एक रास्ता होना चाहिए जिस रास्ते पर चल करके वे भी उस मंजिल तक पहुंच सकें। तो उनके लिए एक है श्रावक धर्म। वह ग्रस्त में रहते हुए भी ग्रस्तोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने आत्मकल्याण के लिए श्रावक धर्म का यदि परिपालन करता है, तो वह ग्रस्त भी धीरे धीरे मोक्ष की मंजिल को पा लेता है। हमारे सामने ये दो रास्ते हैं, एक श्रवण धर्म दूसरा श्रावक धर्म। हम अपनी आत्मिक क्षमता को पहचाने और समझें कि इसमें से हम कितना कर सकते हैं, उतना हमें आज से प्रारंभ कर देना चाहिए। लेकिन आज देखा जा रहा है कि कल्याण का उपदेश बहुत हो रहा है, बहुत बहुत साधु आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष और विद्वान लोग आते हैं और धर्म का उपदेश दे देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन इसके बाद जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? मैं देखता हूं कि जो जहां है वहीं पर है, वर्षों गुजर गए, शास्त्र पढ़ते पढ़ते उपदेश सुनते सुनते धार्मिक क्रियाएं करते करते समझ में नहीं आता कि कमी कहां पर है। उस कमी को एक बार हमें पहचानना चाहेंगे। ये उपदेश हमारे भीतर में ठहरता क्यों नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा है, आचार्य सही ने सुनाया था एक बार कि जब वो साइकिल से स्कूल जा रहे थे तो उनकी साइकिल के चक्के में से हवा निकल गई, तो उन्हें क्या किया कि हवा भरना चाहिए, वो हवा भरते लेकिन उसमें हवा रहती नहीं, बहुत देर हो गई, सब देखा, खोल करके भी देख लिया कहीं कोई पंचर तो नहीं है, तो कोई पंचर भी नहीं था लेकिन हवा उसमें ठहरी नहीं रहती, बहुत देर हो गई। जब बाद में समझ में आया कि इसका बाल्टी कटा हुआ है और उसमें बाल्टी कटा हुआ या लगाना हो तो फिर हवा कहां से ठहरेगी, ट्यूब में वाल न लगा हो तो हवा ठहर नहीं सकती है, यहां से भरी है वहां से बाहर हो जाएगी। बात बहुत छोटी सी है, यदि बाल्टी लग जाता है तो जितनी भी हवा उस चक्की में भर दी जाती है ट्यूब में वो बराबर बनी रहती है और आप अपनी यात्रा आसानी से कर लेते हैं। यहां पर भी हमें उपदेश सुनने के बाद एक बाल्टी जरूर रखना चाहिए और जब तक बाल्टी नहीं लगेगा तब तक ये जितना भी यहां सुनाया जाता है वो सब यही रह जाता है, झाड़ पहुंच करके घर चले जाते हैं हम सब। और उसका ही ये परिणाम है कि आज हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, हम जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, बाहर से भले ही हम धर्मात्मा लगते लेकिन अपने भीतर झांक करके देखें तो वे ही कसाएं जो पहले थे आज भी हैं, वही विषय भोग की सामग्री जिसके पीछे पहले दौड़ रहे थे सो आज भी उसी में लगे हुए हैं। तो क्या परिवर्तन हमारे भीतर में होगा? हो भी नहीं सकता। जिस उपदेश को हम सुनते हैं उसे यदि हम अपना मान करके सुने कि हमारे लिए ही कहा गया है और जो कहा जा रहा है उसमें से हमें पूरे पुरुषार्थ के साथ में उसका अनुसरण करना चाहिए, उस मार्ग पर हमें चलने का प्रयास कर लेना चाहिए। हम इस रास्ते में से कौन सा रास्ता चुनना पसंद करेंगे अपनी शक्ति के अनुसार हमें चुन लेना चाहिए। सभी लोग साधु नहीं बन सकते मैं जानता हूं, लेकिन साधु बने या ना बने लेकिन एक अच्छा ग्रस्त तो बन सकते हैं, एक सदग्रस्त जिसे कहते हैं वह तो बन सकते हैं, और सदग्रस्त के योग जो कर्तव्य है उसके योग जो धर्म है उसका पालन भी तो हम कर सकते हैं और वो हमें करना चाहिए। साधुओं के लिए संता का उपदेश दिया और श्रावकों के लिए संतोष धारण करने की बात कही। यदि दो चीजें उनमें ना हो, संता के अभाव में श्रमणता व्यर्थ हुआ करती है, उस साधु वेश का कोई महत्व नहीं होता जो सुख दुख में, शत्रु मित्र में, हानि लाभ में, बंधु वर्ग में, शमशान और मकान में समान परिणाम धारण नहीं कर सकता, जिसके अंदर में इनको लेकर के आकुलता, संकलेश या राग देश के परिणाम प्रकट हो जाते हैं, वह साधु बन जाने के बाद में भी उसने साधुता का आनंद ही नहीं लिया। साधुता का आनंद तो तभी है जबकि इन सब चीजों में समान बुद्धि धारण कर सके, वह राग देश से बच सके। जितना जितना राग देश से बचता चला जाएगा उतनी उतनी समता उसके भीतर में घटित होती चली जाएगी, और समता की मूर्ति का नाम ही साधु है, समता के अभाव में साधुता नहीं हुआ करती है। तो जैसे साधु के लिए समता अनिवार्य है वैसे ही गृहस्थ के लिए संतोष भी अनिवार्य है। जब तक हमारे भीतर में संतोष नहीं होगा तब तक हम एक अच्छे ग्रस्त नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि हमारे दुख और पीड़ा का कारण यदि कोई है तो वह एक ही है। लोग आकर के पूछते हैं कि महाराज जी हमारे लिए कोई रास्ता बताइए कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, हर कदम कदम पर परेशानियां विपत्तियां खड़ी रहती हैं, इसका कारण क्या है? आपने रहस्य खोजा? परेशानियों का, पीड़ाओं का, दुख का, आकुलताओं का जनक यदि कोई है तो उसका नाम है असंतोष। कि जब जब हमारे भीतर में पैदा होता है तब तब हमें दुख होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि असंतोष की वजह से ही हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं, किसी का भी हो, कहीं पर भी हो, हमारे मन में उसे पाने की एक आकांक्षा पैदा हो जाती है और हमारा पूरा प्रयास उस वस्तु को पाने का रहता है कि जिस किसी भी तरह से एनकैन प्रकार वो पदार्थ हमें प्राप्त होना चाहिए, और जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक हमारे भीतर में आकुलता बनी रहती है, दुख बना रहता है। और शायद ये वजह यही है हमारे दुख की, हम पड़ोसी को देखते हैं, उसका बहुत अच्छा सा मकान है, उसके यहां कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, उसके यहां रहने के लिए अच्छी सब सुख सुविधाएं हैं, आने जाने के लिए बढ़िया सा वाहन है, और अपने पास ना हो तो कैसा लगता है। फिर असंतोष पैदा होता है कि ये काश हमारे यहां भी होता, अच्छा पंखा, अच्छा कूलर, अच्छा फ्रिज, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा खाने पीने का सामान हमारे पास भी होना चाहिए। ये चाहिए वाली जो बात, ये चाहत वाली जो बात एक बार उठ जाती है तो हमारा पूरा प्रयास उसको पाने का होगा करता है, और पूरी कोशिश होती है हमारी कि जिस किसी भी तरह से हम पा लें उसके पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी हिंसा करना पड़ेगी, कितनी झूठ बोलना पड़ेगी, चोरी करना पड़े, अब्रह्म का सेवन करना पड़े, परिग्रह का पाप करना पड़े, सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए हमें क्रोध करना पड़े, हमें मान करना पड़े, छल कपट करना पड़े, लोभ करना पड़े, हम सब के लिए तैयार हैं, लेकिन वे पदार्थ वे वस्तुएं हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि उनके होने पर ही हमारे जीवन का अस्तित्व है, अन्यथा ये जीवन थोड़ी है। फिर ये जो हमारा एक सोच, यह सोच ही हमारे लिए पीड़ा का कारण बना होगा, दुख का कारण बना होगा। जितने जितने हम इस असंतोष से दूर होते चले जाएंगे और जितना जितना हम संतोष के प्रति आते चले जाएंगे उतने उतने सुखी हम निगम से होंगे। यह आप प्रयोग करके देख लेना कि संतोष जो हमारे भीतर में आता है, संतोष एक ऐसा धन है जो एक बार आ जाने के बाद में संसार के समार सारे वैभव, सारा धन, ये सब व्यर्थ दिखाई देने लगता है, सब धूल की तरह दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि संतोष एक ऐसा धन होता है जो हमारे लिए अक्षय और अविनाशी होता है, हमारे आत्मा का गुण हुआ करता है। एक बार प्रकट करके देखो अपने आप, हम आनंद की अनुभूति करेंगे, हम सुख का वेदन करेंगे। यदि हम करना चाहते हैं तो हमें करना चाहिए, और हमारे ग्रस्तोचित मार्ग यही है। जो व्यक्ति संतोष में नहीं जीता उसका ग्रस्त जीवन भी कोई महत्व नहीं रखता, भले ही वह रोज रोज भगवान की पूजा करता हो, बहुत अच्छा सा आचरण करता हो, संयम पालन करता हो, व्रताचरण करता हो, पापों से दूर रहता हो, लेकिन यदि संतोष ना हो तो उसका ये सब कुछ करना किस काम का, कोई महत्व तो नहीं रखता, क्योंकि ये सब कुछ करते हुए भी हम वही कर रहे हैं जो एक आम आदमी करता है, वही हम करते चले जा रहे हैं, तब फिर हमारा और उसके जीवन में अंतर क्या रहा। हम बाहर से धर्मात्मा कहलाते हैं, पूजा पाठ रचाते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं समझा। अरे यदि हम भगवान के प्रति श्रद्धाभाव रखते हैं तो कम से कम उनकी श्रद्धाभाव रखने से इतनी शिक्षा तो ग्रहण कर लेनी चाहिए कि हमारे इष्ट देव ने, हमारे आराधक ने, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, उन्होंने भी यदि सुख प्राप्त किया है तो इस सब कुछ छोड़ करके प्राप्त किया है, जोड़ करके नहीं। जोड़ने वाला व्यक्ति जोड़ते जोड़ते जिंदगी समाप्त कर देता, व्यतीत कर देता है, लेकिन पूरा नहीं जोड़ पाता है, उस संकलेश में जीवन बीतता है, दुख के साथ जीवन बीतता है, कुछ नहीं पा पाता। लेकिन हमारे आराध्य, हमारा जो इष्ट देव है, जो हमारा परमात्मा है, वो परमात्मा इसलिए है कि उसने अपनी आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली, और आकांक्षा पर विजय प्राप्त वही कर सकता है जो समूची वस्तुओं से अपना मुख मोड़ लेता है। व्यक्ति का भाव उसके अंदर में आ जाता है, फिर भी पदार्थ भी वस्तुएं चाहे वही रह जाते हैं, उससे अपने को अलग कर लेता है और संतोष में जीने की कोशिश करता है। और संतोष में जीने वाला व्यक्ति ही समता का अनुपान कर सकता है। जिसके जीवन में संतोष नहीं, उसके जीवन में समता भी नहीं आ सकती। हमारा परमात्मा इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो समता का भंडार है। उसने सब प्राणी मात्र के ऊपर संदर्शित तो प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो हमारे पूज्य हैं। हम पूजा इसलिए तो करते हैं, हम उनके गुणों की पूजा कर रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। वो निष्प्रय हैं, त्यागी हैं, वो निरंत हैं, वो आकांक्षाओं से अतीत हो चुके हैं, इसीलिए तो हम उनकी पूजा करते हैं। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, कम से कम उनकी पूजा करने से एक गुण, एक छोटी सी शिक्षा तो हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए कि भगवान के पास जाकर के कि इनके पास कुछ नहीं इसलिए सुखी हैं, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा, हम पूरा ना छोड़ पाए तो कम से कम एक निश्चित दायरा तो कर लें, अपने वस्तुओं का एक परिमाण तो बना लें कि इतनी वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, उससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगा। इतनी इतना बना लेते हैं तो मान के चलना कि हमारे भीतर में संतोष गुण का प्रादुर्भाव हो रहा है और हम सुख के नजदीक पहुंचते चले जा रहे हैं। जितना जितना संतोष बढ़ता चला जाएगा उतना उतना सुख का भी प्रादुर्भाव होता चला है, सुख भी बढ़ता चला जाएगा। कहा जाता है संतोषी सदा सुखी, ये सूत्र है। इसे हम मात्र हम लिख लेते हैं अपनी कॉपी पर, दीवाल के ऊपर या कहीं भी अंकित करा देते हैं, जीवन में नहीं उतर पाता। यदि हमारे जीवन में उतर जाए कि संतोषी सदा सुखी, फिर तो कहीं नहीं क्या, फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा जीवन बताएगा कि हम सुखी हैं क्योंकि हमारे भीतर में संतोष है। असंतोषी व्यक्ति हमेशा दुख उठाएगा, ये सुनिश्चित है, क्योंकि वह पदार्थों के प्रति दौड़ता है। उसकी आकांक्षा, उसका लालच, उसकी लोभ उसके उस तरफ दौड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम्हें यह पाना है और पूरा पुरुषार्थ इसके लिए करो। और अंततः रत्ता क्या होता है कि सारा जीवन पीड़ा के साथ बीत जाता है और कुछ हासिल नहीं हो पाता। समय आपका हो रहा है और एक छोटी सी घटना सुना करके मुझे अपना वक्तव्य यही पूरा कर देना है। एक व्यक्ति जिसके परिवार में सब कुछ था लेकिन अकेली उसकी मां थी, पिता थे नहीं, पिता शांत हो चुके थे, लेकिन धन वैभव इतना था कि यदि वो अपने जीवन का निर्वाह करता तो शायद दो चार पीढ़ियों तक का कमाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन उसके मन में एक आकांक्षा पैदा हो गई कि मुझे अपने पुरुषार्थ के द्वारा कमाए हुए धन का ही उपभोग करना चाहिए, इसमें ही मेरे जीवन की सार्थकता है। उसने अपना ये प्रस्ताव अपनी मां के सामने रखा कि मैं विदेश जाकर के व्यापार करना चाहता हूं, कुछ धन अर्जन करना चाहता हूं। मां ने बहुत समझाया कि घर में बहुत है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने एक भी ना मानी और मां से कहकर के वो विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गया, व्यापार के लिए चला गया। व्यापार जारी हो गया, खूब पैसा कमा रहा है, धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा है। अचानक एक दिन क्या होगा कि उसके गांव से एक पत्र आया उसके लिए और उसमें लिखा था कि इस तारीख में तुम्हारी मां का देहांत हो गया है, तुम शीघ्र अपने देश वापस लौट करके संस्कार विधि करो, पूरी क्रियाएं करो। उसने वो पत्र पढ़ा तो बड़ा दुखी होगा क्योंकि मां शांत हो चुकी है, लेकिन मन में आया कि अब मां तो शांत हो ही गई, वापस लौटेंगे यदि तो मां मिलने वाली तो है नहीं, फिर से व्यर्थ में इतना पैसा खर्च किया जाए, यहां से लौट करके अपने देश लौटूंगा, बहुत पैसा होगा, इसलिए उस खर्च से बचने के लिए अच्छा है कि यहीं पर वो क्रियाएं कर ली जाए। तो उसने एक पंडित से सलाह ली, ब्राह्मण थे, उसने कहा कि आप यहीं कर क्रिया कर लीजिए, मैं करा दूंगा। उसने क्या चाहिए कि मैं पूजन की सामग्री चाहिए और उसमें श्रीफल जरूर होना चाहेंगे। तो श्रीफल के खरीदने के लिए वो बाजार गया और दुकानदार से पूछा कि श्रीफल है? हाँ है। कितने का? 5 रुपए का। तो वो तो जानते हो कि भारत का रहने वाला था, बिना भावताव किए तो खरीद ही नहीं सकता है। आप भी ऐसे ही करते, बाजार जाते हैं तो बिना भावताव के तो कुछ भी नहीं लेते। तो उसने कहा कि 4 रुपए में दे दो। उसने कहा यहां भावताव नहीं होता, चाहिए हो तो 5 में ले लो, नहीं हो तो आगे बढ़ जाओ, आगे वाली दुकान पर मिल जाएगा 4 रुपए में। कहां पर है वो दुकान? यहां से थोड़ी दूर चले जाओ, वहां मिलेगा। वो आगे बढ़ गया, वहां जाकर के पूछता है श्रीफल यहां है? कितने का है? 4 रुपए का। अरे अब तो 4 में मिल रहा है। उसने कहा 4 में कैसे खरीदेंगे हम? जब वो 4 कह रहा है तो हम तो खरीद ही सकते 4 में, अपनी तो आदत में। उसने कहा 3 रुपए में दे दो। बोले काम करो, इस शहर के बिल्कुल अंत में एक थोक की दुकान है, वहां 3 रुपए में मिल जाएगा। तो वहां चला गया, उसने श्रीफल हां मिल जाएगा। श्रीफल जानते हो? नारियल। नारियल है? हां। कितने का? बोले 3 रुपए का। उसने कहा 3 में कैसे खरीदे? 2 रुपए में दे दो। बोले काम करो, यहां से थोड़ी दूर और चले जाओ, इतनी दूर तक तुम आ गए हो, मुफ्त में मिल सकता है। मुफ्त में कहां मिलेगा? बस यहां से थोड़ी दूर चले जाओ, समुद्री किनारे पर बहुत सारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और वहां आपको मुफ्त में नारियल मिल जाएगा, और एक नहीं बहुत सारे मिल सकते हैं। उसने कहा बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रास्ता बताया। और वो समुद्री किनारे तरफ चला गया और देखा कि वास्तव में बहुत नारियल के पेड़ लगे हुए थे, बहुत उसमें नारियल लगे हुए हैं। और उसने प्रयास किया नारियल के पेड़ पर चढ़ने का, लेकिन कभी तो चढ़ा नहीं था नारियल के पेड़ पर, तो उसे बार बार फिसल रहा था। कई बार फिसला, हाथ पैर छिल गए, लेकिन वो थोड़ी मानने वाला था, उसे तो श्रीफल चाहिए था, बिना श्रीफल के तो वो छोड़ने वाला नहीं था। जिस किसी भी तरह से वो नारियल के पेड़ पर ऊपर चढ़ गया और उसने नारियल तोड़ना चाहा, तो एक हाथ से नारियल पकड़ा तो नारियल कच्चा था, कच्चा था तो वो टूटा नहीं, टूटा नहीं तो वो हाथ तो वही, यहां जो पेड़ का हाथ था वो थोड़ा स्लिप हो गया तो खिसक गया, तो नारियल से लटक गया। अब आप ये मत सोचना कि वो नारियल से कैसे लटका होगा, ये तो कहानी है, और कहानी में तो नारियल से ही लटकेगा वो तो। अब पेड़ तो छूट गया और नारियल को पकड़े हुए है, और नारियल कच्चा था इसलिए टूटा नहीं। उसने कहा हे भगवान, ये तो बड़ी मुसीबत आ गई, अब तो नीचे देखता हूं तो खाई है बहुत बड़ी, यहां गिरूंगा तो मर जाऊंगा बिल्कुल। बहुत देर तक देखता रहा कोई आए सहायता करे, तो वहां से एक हाथी वाला निकला, तो उसने आवाज लगाई तो हाथी वाला पास में आया। उसने देखा कि ये क्या सर्कस हो रहा है, ये तो नारियल से लटका हुआ है, क्यों भाई क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, आप तो हमें नीचे उतार लो। तो समझ गया कि क्या बात है, बोले यहां कैसे आया? उसने अपनी राम कहानी सुना दी, तो उसने समझा कि अरे इस लोभ में आ गया। उसने कहा यहां से थोड़ी उतारूंगा, हम तुम्हें उतारेंगे, क्या दोगे तो हमारे लिए? बोला मेरे पास 500 रुपए हैं, मैं तुम्हें पूरे 500 रुपए दे दूंगा, लेकिन मुझे नीचे उतार लो। तो हाथी वाले को लोभ आ गया, उसने अपना हाथी किनारे पर लगाया, उस हाथी के ऊपर वो खड़ा हो गया हाथी वाला, और उसने उसके पैर पकड़ना चाहे, इतने में हाथी धीरे से आगे खिसक गया। अब उसने पैर तो पकड़ लिए, लेकिन नीचे से हाथी खिसक गया, तो अब एक की जगह 2 हो गए। और ऊपर वाला कहता है कि भाई साहब मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, अब मैं छोड़ रहा हूं। तो नीचे वाला कहता छोड़ना मत, मैं तो मर जाएंगे दोनों। बोले तो क्या दोगे फिर? अब उसे लोग आ गए, बोले क्या दोगे? बोले 500 रुपए तुम अपने पास में रखना, और मेरा जो हाथी है मैं हाथी भी तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा तो बड़ा अच्छा काम होगा। तो उसने पकड़ा रहा थोड़ी देर तक और प्रतीक्षा की, तो वहां से एक ऊंट वाला निकला, दोनों ने आवाज लगाई, तो उसने देखा कि तो कोई सर्कस हो रहा है, दो लटके हुए। बात क्या है? उसने अपनी राम कहानी सुना करके कहा कि हमें नीचे उतार लो। तो उसने भी कहा क्या दोगे? बोले मेरे 500 रुपए और इसका हाथी तुम्हें पूरे दे दूंगा। और ऊंट वाले ने ऊंट लगाया, और ऊंट तो जान से बड़ा चंचल प्राणी होता है, और जैसे ही उसने लगाया उस पर खड़ा हुआ तो मुंह से घबरा करके आगे निकल गया, और उसने पैर पकड़े तो दो की जगह तीन हो गए। अब मुश्किल पड़ी, अब तीन का वजन तो ज्यादा होता, नारियल अभी भी टूटा नहीं है, वो टूटेगा भी नहीं अभी, क्योंकि जब तक कहानी पूरी नहीं होगी तब तक वो नारियल टूट नहीं सकता है, वो तीनों लटके रहेंगे। और हुआ क्या कि ऊपर वाला कह रहा है कि आप मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत दुख रहे हैं, अब मैं छोड़ने वाला हूं, तो नीचे वाला कहता छोड़ना मत। बोले क्या दोगे तुम? बोले तुम्हारे 500 रुपए और इसका हाथी और मेरा ऊंट, तुम सब कुछ ले लेना लेकिन छोड़ना मत। अब तो बड़ा प्रसन्न होगा वो, उसने सोचा कि ओहो बहुत काम हो गया, 500 रुपए बच गए, हाथी मिल गया, ऊंट मिल गया, उस श्रीपंत तो तोड़ के ले ही जाना है अभी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। इस खुशी में उसने क्या है तालियां बजा दी, और जैसे ही तालियां बजाएं तो तीनों के तीनों खाई में गिर गए, देहावसान हो गया तीनों का। एक नारियल के लोभ में आकर के उसने अपनी जिंदगी समाप्त कर दी, और लोभी के संपर्क में आकर के लोभ का जो रोग है ऐसा फैला के दूसरा भी उसके उसमें आ गया, उसने भी अपनी जान दे दी, तीसरा भी उसमें उसके चक्कर में आ गया, उसने भी अपने प्राण दे दिए। इस लोभ, ये लोभ ऐसा संक्रामक रोग है कि खाज की तरह फैलता है, खुजली की तरह फैलता है चारों तरफ, और एक की वजह से दो के और प्राण चले गए। ये उसका असंतोष था कि यदि उसे इतना संतोष होता कि मुझे नहीं चाहेगी इतना पर्याप्त है तो विदेश जाने की जरूरत न पड़ती, घर में बहुत था, लेकिन असंतोष की वजह से दुख ये पूरा रही कि अपना देश छोड़कर के विदेश गया, अपने प्राण छोड़ दिए, दो के प्राण और साथ में ले लिए, दो भी उसके लोभ में चक्कर में आकर के फंस गए, दो भी चले गए। दुख से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि हम संतोष का सहारा लें, असंतोष से बचेंगे तो हमारे ग्रस्त जीवन में भी हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूं। आचार्य भूवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी की जय।
जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की।
वैसे पिछले दिनों से लगातार अपन बहुत सारी बातें अपने जीवन के विकास के बारे में सीख रहे हैं। किसी भी तरह से हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जैसा गुजर रहा है उससे जरा अच्छे ढंग से गुजरे हैं। हम यहां मनुष्य की तरह पैदा हुए हैं, तब ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ और बन सकें, हमें तो मनुष्य की तरह से ही जीना पड़ेगा। पर मनुष्य भी यहां कितने हैं और कितने प्रकार से जीते हैं, सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है, सबके अपने जीने का ढंग है। हमारी अपनी कोशिश सबकी यह होती है कि वो दूसरे से अधिक अच्छे ढंग से जिए। मेरा विचार यह है कि क्यों हम ऐसा सोचें कि हम दूसरे से अच्छे ढंग से जिए, क्यों ना ऐसा सोचें कि सचमुच जैसा जिया जाता है वैसे हम जिए। दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं, लगते एक जैसे हैं लेकिन बहुत फर्क है। हम जिस तरह जी रहे हैं वो हमने दूसरे से बेहतर जीने के वजह से ही अपने पूरे जीवन को नष्ट करके रखा है। अगर देखा जाए तो दूसरे से बेहतर कैसे जिएंगे? हम सोचते हैं कि बहुत सारी सुविधा की सामग्री हमारे पास होगी तो हम दूसरे से बेहतर जीने वाले कहलाएंगे, हम दूसरे से ज्यादा जानकारी रखेंगे तो हम दूसरे से ज्यादा बेहतर जीने वाले कहलाएंगे। हमने इस तरह से दूसरे के संदर्भ में अपने जीवन को जीना शुरू किया है। और बचपन से ये कोई बात को शुरू होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये कॉम्पिटिशन में या कि कंपैरिजन में शुरू से बेटे को डाला जाता है जब वो पैदा होता है। मैं तो सोचता हूं कि वो तो पता नहीं क्या क्या सीख के आता होगा, लेकिन शुरू में हम उसे क्या सिखा देते, सबसे पहले कंपटीशन सिखाते हैं। सबसे पहले उसका वेट करते हैं और वेट करने के बाद 10 पाउंड का है, बाजू वाले का 12 का हुआ था, अपना तो 10 ही का हुआ, अपना भी 12 पाउंड का होना चाहिए था। कंपटीशन शुरू वहां से कंपटीशन शुरू हुआ, वो दूर से नहीं, वहां जबकि वो पैदा हुआ आज अभी एक दिन का नहीं हुआ है, वो घंटे भर का नहीं हुआ और हमने उसको कंपटीशन में डाल दिया। अब जो वो थोड़ा बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि दौड़ो, वो जो बाजू वाले का बेटा है वो तो एक साथ दो क्लास पढ़ गया, और तुम तो एक एक पढ़ रहे हो धीरे धीरे, और उसने एक और तुम एक एक पढ़ रहे हो तो वो तो 80 or 90% लाता है, तुम तो जो है 60% पे ही रुक जाते हो, जरा और तेज दौड़ो। तो हमने शुरू से उसको कॉम्पिटिशन में डाल के और हम स्वयं भी कॉम्पिटिशन में पढ़ करके और आज अपनी लाइफ को दूसरे के संदर्भ में सोचते हैं। मैं तो सोचता हूं कि सबसे बड़ी अगर पीड़ा का कोई कारण है तो वो यही है कि हम क्यों कंपेयर करते हैं, और वो भी भौतिक सुख सुविधाओं से कंपेयर करते हैं। लाइफ स्टाइल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं बनती भैया, हमारे अपने परिणामों की निर्मलता से बनती है। जिसके परिणाम जितने निर्मल हैं उसका जीवन उतना बेहतर है, और जिसके परिणाम निर्मल नहीं है, संक्लेश से युक्त हैं, उसका जीवन कितना ही बाहर से अच्छा दिखाई पड़े पर वो अच्छा नहीं है। तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दें कि हम दूसरे के संदर्भ में क्यों सोचें कि हमें दूसरे से बेहतर जीना है। नहीं, मुझे तो सिर्फ बेहतर जीना है, मुझे जैसा जिया जाना चाहिए था, मुझे जैसा मनुष्य का जीवन मिला है जिसने दुर्लभता से मिला है मैं उसको दुर्लभ समझ करके जीऊं। आपने कभी नहीं सोचा है ये बात? सोचिए, हम सुन तो लेते हैं कि दुर्लभता से मिला हुआ है, लेकिन दुर्लभता से मिली हुई चीज को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं ये कभी आपने सोचा? अपने छोटे से बच्चे को देख लीजिएगा, जब वो अपने पॉकेट मनी में से बचा बचा करके और 5-5, 10-10 पैसे और रुपए बचा करके और फिर इकट्ठा करता है, 100 रुपए इकट्ठे करता है, फिर उससे आप पूछो कि क्या करोगे, वो कहेगा प्लान कर रहा हूं, जरा ठहरो, इतनी जल्दी नहीं, ये खरीद लो वो खरीद लो, नहीं अभी ऐसे कैसे, 100 रुपए जोड़े हैं, बहुत मुश्किल बामुश्किल जोड़े हैं, जेब खर्च में से बचा बचा के जोड़े, जरा सोचेंगे क्या खरीदना है, कोई ऐसी चीज खरीदेंगे जो कि दूसरे लाइफ लॉन्ग हो। जब हम अपने इतने छोटे से जीवन में जोड़ी गई चीजों को जो मुश्किल से जुड़ती हैं उनको हम आसानी से खर्च नहीं करते हैं, तब फिर हमने कितनी मुश्किल से ये अपना मनुष्य जीवन पाया उसको इतनी आसानी से कैसे खर्च कर रहे हैं, ये कभी सोचा? जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत करनी आना चाहिए, और जो चीज नहीं मिली है लेकिन कीमती है उसकी भी कीमत हमें आनी चाहिए, दोनों जरूरी है। ये अगर हमें मालूम पड़ जाए, ये अगर हमें विश्वास हो जाए कि हां मेरा जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, तब तो हम इसको ठीक ठीक जिएंगे, वरना तो कोई दूसरा आता है वो आपको एक लाइफ स्टाइल देता है, कोई और आएगा वो आपको लाइफ स्टाइल देगा। धर्म ने कभी किसी को लाइफ स्टाइल इनिशियली नहीं दी, बाद को दी है, लेकिन धर्म हमेशा लाइफ स्टाइल नहीं सिखाता, धर्म एटीट्यूड चेंज करना सिखाता है। प्रॉपर आपका अगर एटीट्यूड है, आपका सोच अगर प्रॉपर है, तो आपका आचरण जरूर से ठीक होगा। जब हमारा सोच ही गलत है, दूसरे के संदर्भ में अपना जीवन जी रहे हैं, तब फिर कैसा भी जी लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
कोई जीवन में शांति उतरने वाली नहीं है। अगर हमारा सोच हमारा विचार अगर पवित्र है तो उन पवित्र विचारों से उन परिणामों की निर्मलता से हमारा सारा आचरण अपने आप पवित्र हो जाने वाला है। बाहर से पवित्रताएं आती हैं लेकिन अगर वो भीतर तक नहीं पहुंच पाती हैं तो उन बाहर की पवित्रताओं का कोई मकसद नहीं है, उनका कोई उनकी सार्थकता नहीं है। हमें अपने भीतर निर्मलता लानी चाहिए ताकि हमारा बाहर का आचरण भी पवित्र हो। उसी को कहेंगे कि आपने बेहतर जीवन जिया। और अब हमने आपके सामने मुश्किल खड़ी कर दी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। जो चीज जैसी है उसे वैसा देखने की आदत डालिएगा, जो चीज जैसी नहीं है उसे वैसे देखने की आदत तो बहुत है अपन की, जैसी नहीं वैसा देख लेते हैं, जैसी नहीं है और हम जैसी देखना चाहते वैसी देख लेते हैं। मजा ये अपने साथ में, जैसी है वैसी देखना तो ठीक ही है, जैसी देख लेना चाहिए वैसी भी नहीं देखते, हम जैसी देखना चाहेंगे वैसी देखेंगे, हमारी मर्जी। ऐसा नहीं होना जी, और ऐसा निरंतर हो रहा है, अपन सबके साथ हो रहा है। हम नहीं जानते, इसलिए शायद किसी ने लिखा कि अपने आंखों देखी और कानों सुनी पर भी विश्वास मत कर लेना। अपनी आंखों देखी पर, क्योंकि तुम नहीं जानते, क्योंकि ये आंखें कुल नहीं देख पाती, पूरा नहीं देख पाती हैं, ये कान ठीक ठीक सुन नहीं पाते हैं। तुम तो अपने अनुभव से जो चीज आए उस चीज को ही सच्चा मानना। ये आंखों से देखी, ये जो मोक्ष मार्ग है वो आंखों से दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं है, ये मोक्ष मार्ग जो है कानों से सुनाई पड़ने वाली चीज नहीं है, ये तो चेतना की बिल्कुल विशुद्ध दशा है। और उस दशा में पहुंचने पर ही कोई रियलाइज कर सकता है उस चीज को कि हाँ वास्तविकता ये है। उस वास्तविकता को पाने के बहुत सारे उपाय हैं, उस वास्तविकता को कैसे देखें इसके लिए मुझे आंख पैदा करने पड़ेगी, ये बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन वास्तविकता ऐसे दिखाई नहीं पड़ने वाली है, उसके लिए मुझे तैयारी करना पड़ेगी, और वो तैयारी शुरू होती विश्वास से शुरू होती है। सच्चे देव गुरु शास्त्र पर विश्वास, और सबसे बड़ी चीज सच्चाई पर विश्वास। सच्चाई पर हमारा विश्वास बहुत जल्दी नहीं होता है, और झूठ पर तो हम विश्वास आसानी से कर लेते हैं। अपने जीवन की सच्चाई जानते हैं हम, अपने जीवन की सच्चाई इतनी है कि दो चार दस सांसें हैं, रोज रोज खत्म हो रही हैं और एक दिन पूरी खत्म हो जाएंगी। इससे बड़ी सच्चाई और कोई हो सकती है? ये शरीर जिससे मैं चिपका फिरता हूं, जिसको मैं अपना माने फिरता हूं, वो एक दिन मुझे छोड़ के चला जाएगा। वो क्या छोड़ेगा, मैं ही इसे छोड़ दूंगा और चले जाऊंगा, फिर भी इससे चिपका हुआ हूं। इससे बड़ी सच्चाई और कौन, किसको आप बताने जाना है, किससे पूछने जाना है? ये सच्चाई, ये सच्चाई तो हम रोज जानते हैं, रोज जीवन में अनुभव करते हैं। जो हम संबंध बनाते हैं बेसंबंध भी कितने दूर तक चले जाते हैं, उनकी सच्चाई हम सच्चाई जानते हैं, सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। कोशिश करिएगा कि वास्तविकता को अगर जानना है तो जो जो सच्चाई है, चाहे वो संबंधों की सच्चाई हो, जिसको अपन कहते हैं संसार शरीर और भोग, इनकी सच्चाई अगर व्यक्ति को मालूम पड़ जाए फिर देखिएगा उसका स्टाइल क्या होता है जीने का। जिसको संसार की सच्चाई मालूम है कि आवागमन यहां लगा हुआ है और बड़े से बड़ी पीड़ा आवागमन की है, मुझे अब आवागमन नहीं करना है, मुझे यात्राएं स्थगित करनी है, बाहर की और अंतर की यात्रा शुरू करनी है, यही तो संसार की वास्तविकता के जानने का मतलब हुआ। और हम और संसार की वास्तविकता जानने के लिए यात्राएं बढ़ा दें कि मैं तो सोचता हूं कि एक बार इंग्लैंड देख करके आऊं, मैं तो ब्रिटेन घूमने का, ऑस्ट्रेलिया घूमने का मेरा मन। अच्छी बात है, घूमो। अगर आपको इस तरह सच्चाई मालूम पड़ती है तो मालूम कर लो, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर करके आना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई हमसे पृथक नहीं है, वो हमारे पास ही है, हम तो घूम फिर करके वहीं आएंगे। संसार देख लो, खूब अच्छे से देख लो। संसार देख लेने के बाद अगर उससे जी भर जाए तो एक बार उससे प्रणाम करना और कहना कि अलविदा, जाता हूं इस संसार को छोड़ करके हमेशा। भोगों की तासीर भी एक बार भोग करके देख लो अच्छी तरह से, और शरीर के बारे में भी खूब अच्छे से अनुभव कर लो। इन तीनों चीजों को अगर ठीक ठीक जान लेंगे, हमारा विश्वास इन पर हो जाएगा, तब तो धर्म की शुरुआत होगी, तब तो हमारा जीवन बेहतर होगा। वरना बहुत थोड़ी सी क्रियाएं दोहरा लेने का नाम धर्म नहीं है भैया।
रोज क्रियाएं दोहरा रहे हैं, रोज अच्छे अच्छे विचार दूसरे से भी सुन रहे हैं और खुद भी कोशिश कर रहे हैं अच्छे अच्छे विचार पाने की, लेकिन अच्छे विचार अच्छी क्रियाएं हमारे जीवन को बदल क्यों नहीं पा रहे हैं? इसलिए नहीं बदल पा रहे कि हमारा एटीट्यूड हम चेंज ही नहीं करना चाहते। हम देखते वही हैं, जैसा हम देखना चाहते हैं वही हम देखते हैं। अपनी गंदी आंख से देखते हैं तो हर चीज गंदी दिखाई पड़ती है। जो चीज जैसी है वैसी देखने के लिए तैयारी बहुत आवश्यक है। तैयारी बिना विश्वास के नहीं होती। जैसा भगवान ने तत्व का स्वरूप कहा ठीक वैसा स्वरूप मैं देखता, मैं ठीक वैसा स्वरूप अनुभव करता, मैं अपने शरीर को शरीर मान के उसके साथ शरीर की तरह व्यवहार करता हूं, मैं भोग सामग्री का उपयोग करता हूं उसमें इंडल्ज नहीं होता हूं, मैं संसार में रहता हूं लेकिन संसार को अपने भीतर प्रवेश नहीं देता, बस इतना ही है खेल। अब ये जिसको जब समझ में आ जाए और जो जो फॉलो कर ले, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जीत उसी की होती है जो इन सबको समझ करके वास्तविकता पर विश्वास करता है। और हम हारे हुए लोग हैं, हमेशा हारते हैं इन सब चीजों का वास्तविकता जानते हुए भी, डिनाइल ऑफ रियलिटी, हम वास्तविकता से निरंतर पलायन करते हैं। हम नहीं जानना चाहते, कोई हमसे ये पूछे कि आप कितने बड़े हो गए तो हम बड़े शौक से कहेंगे कि मैं 60 years आई एम ओल्ड, मैं 60 साल का हो गया। आप क्या समझ रहे हैं ये बाल वैसे नहीं पके हैं, 60 साल हो गए। अच्छा, और अगर धीरे से पूछ लो कि कितने मर गए तो फिर दूसरी बार बोलोगे नहीं, उससे बात करने का मन नहीं बनेगा, जबकि वो ठीक पूछ रहा है कि कितने मर गए। 60 के तो मर गए, और जितने 10-20 साल के बच्चे होंगे वो कहो कि 10-20 साल बच्चे हैं, 60 तो मर गए। लेकिन ऐसा कहने में कि ये डिनाइल ऑफ रियलिटी का उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो पलायन करते हैं हम 60 साल कहकर के, ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, जबकि 60 साल कहकर के उसी क्षण ये आना चाहिए था कि 60 साल मेरा जीवन व्यतीत हो गया, मैंने क्या पाया क्या खोया। रोज मैं सुबह से उठूं और आज दिन भर मुझे क्या पाना है और कल मैंने क्या खो दिया है और क्या पा लिया है, इसका लेखा जोखा वही करेगा जिसने एक बार अपना दृष्टिकोण बदल लिया है। और जब तक दृष्टिकोण नहीं बदला, इसी को अपनी शास्त्र की भाषा में सम्यक दर्शन कहते हैं, दृष्टि बदल जाना। बस दृष्टि बदल गई, सारी सृष्टि बदल गई। उसी सृष्टि के बीच अनाशक्त होकर के भी रहा जा सकता, जैसे कि जल से भिन्न कमल है, श्रावक के लिए लिखा हुआ है ये चीज, साधु के लिए तो बहुत ऊंची बात है। श्रावक को कह रहे हैं कि जल से भिन्न, मुझे तो आज तक जो है बहुत रेयर कहीं पर कोई श्रावक मिल जाए जो कि जल से भिन्न कमल की तरह जीता हो, और जिसने कभी ये ना कहो कि गृहस्थी मेरे लिए जंजाल है, जो ये कहता हो कि गृहस्थी को ठाठ से जीता हूं और एक दिन सबको प्रणाम करूंगा। इस 55 होंगे और कोई रिटायर करे या ना कहे, मैं तो रिटायर होने वाला हूं और मैं निश्चिंत हूं, मैंने तो गृहस्थी का पूरा आनंद ले लिया, अब बस वापिस लौटूंगा, यहां से जाऊंगा वापिस। सब यही कहते हैं, उसी को बनाते हैं। मजा अपने साथ ये है कि उन्हीं चीजों की निंदा करते हैं, उन्हीं को भोगते हैं। देखना आप, इतना क्रिटिसाइज करेंगे भोगों की और फिर इधर से लौटेंगे तो उसी में उतने ही बढ़िया से लीन हो जाएंगे। ये अपन लोगों के साथ, इसी को बोलते हैं डिनाइल ऑफ रियलिटी। ये वास्तविकता से पलायन है, वास्तविकता जान रहे हैं उसका खूब खूब निंदा कर लेंगे उसकी, फिर उसी को चाहेंगे भी अपन। नहीं, ऐसा दोहरा मापदंड नहीं बनाना चाहिए। जिस पर हमने विश्वास किया, जिस वास्तविकता को हम जानते हैं, उसके लिए हमें अपने जीवन में रियलाइज करके उसको फॉलोअप भी करना चाहिए, उसको हमें अपने जीवन में लाना भी चाहिए। मैं एक बहुत छोटी सी घटना कहूं, हम हारे हुए लोग कैसे जीत सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन को बेहतर जी सकते हैं, कैसे हमारे भीतर श्रद्धा आ सकती, कैसे हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड दो ही एटीट्यूड हैं। आप हर चीज को पॉजिटिवली देखिए ना, आप नेगेटिव क्यों देखते हैं, आप उसके बुरे पहलू को देखते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति मुझे बता दो, कोई चीज यहां बता दो जिसका अच्छा बुरा दो पहलू ना होते हो, कोई चीज बिल्कुल अच्छी अच्छी हो तो सिवा भगवान के और कुछ नहीं, और भगवान भी यहां दिखता नहीं, मूर्ति दिखती उसमें भी नुक्स निकल आएगा। मुझे कोई चीज बता दो आप जिस चीज में बुराई ना हो, सिर्फ अच्छा ही अच्छा ही। फिर जब अच्छी और बुरी दोनों ही चीजें होती हैं, तब क्यों ना हम उसमें से अच्छी चीज देख लें, क्यों हम बुरी चीज देखते हैं और बुरी चीज देख के अपना मन गंदा करते हैं, और तो किसी का कुछ बिगड़ता नहीं, अपने ही बिगड़ता है। क्या हुआ, एक बार एक राजा के यहां पर विपत्ति आ गई, पड़ोसी वाले देश ने उस पर आक्रमण कर दिया। अब इतना शक्तिशाली देश जिसने आक्रमण करा था,
कि ये छोटा सा देश, इस देश के सारे सैनिकों ने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा अपन नहीं लड़ते भैया, क्योंकि मरना निश्चित है। सेनापति भी पीछे हट गया। अब राजा पर मुश्किल आई कि सेनापति भी जवाब दे गया, सैनिक भी जवाब दे गए, अब जिम्मेदारी कौन निभाए। बहुत समझाया, लेकिन ऐसे थोड़ी समझ में, जब तक भीतर ये एटीट्यूड बन गया है कि हम तो हार ही जाएंगे, तब तो कोई हारने से पहले ही हार गया। अब उसने कहा क्या किया जाए। एक मित्र उसको याद आया कि एक मित्र है मेरा, वो घर छोड़ के चला गया था, शायद वो कोई सलाह दे। घर छोड़ के जाने वाला घर के बारे में बहुत अच्छी सलाह दे सकता है, घर में रहने वाला नहीं दे सकता। वो अपने एटीट्यूड से देखेगा, और जो तटस्थ होकर दूर खड़ा हुआ है, जो सबको एक सार देख रहा है, वो ठीक सलाह दे सकता। और ऐसे ही हुआ, वो मित्र के पास पहुंचा तो उस मित्र ने कहा कि अगर ऐसी मुसीबत आ गई है तो लाओ मैं बन जाता हूं सेनापति, मैं चले जाता हूं लड़ने। उसने कहा क्या मजाक की बात करते हो, तुम तो साधु बन गए हो और ऐसा ऐसी बात कर रहे हो कि लाओ मुझे दो तलवार और मैं चले जाता हूं सेनापति बन करके, कोई अच्छा उपाय बताओ। बोले बस यही उपाय है, मैं ही चले जाता हूं। नहीं माना वो। उसने कहा ठीक, अगर ऐसा कहते हो तो करो। मित्र वापिस आया और उसने सेना के बीच कहा कि मैं इस राजा का मित्र, मेरा साथ दोगे? मैं अकेली अपनी दम पर लड़ सकता हूं, अगर तुम मेरा साथ दो तो जीत हमारी निश्चित है। सारे सैनिक भी एक बार थोड़े से मुश्किल में पड़े कि जब ये आदमी कह रहा है, एक अकेला आदमी, कि मैं तो जा ही रहा हूं लड़ने और मैं जीत के लौटूंगा, तो क्यों ना अपन इसके साथ हो जाए। जीतने के वाले के साथ तो सब होते हैं। तो वो साथ में हो गए, साथ में हो गए तो वो जो सेनापति बना था साधु मित्र जो उसका था, वो ऐसे रास्ते से ले गया जहां की एक खंडर पड़ता था जिसमें भगवान हुआ करते थे, मूर्ति थी उनकी, वहां से ले गया। टूटा फूटा सा मंदिर देवालय था। वहां से जब निकले तो साधु बने हुए सेनापति ने कहा कि, सेनापति बने हुए साधु ने कहा, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, सेनापति बने हुए साधु ने कहा, साधुता तो जाएगी नहीं उसकी, भले ही सेनापति बना दो। उसने कहा कि चलो जरा भगवान के दर्शन कर ले, प्रार्थना कर ले और पूछ ले कि इनकी क्या मर्जी है। अगर इनकी मर्जी हमें हराने की है तो हम यहीं से वापस लौट जाते हैं, कह को बेकार में परेशान हो, और अगर इनकी मर्जी है कि ये जिता देंगे तो अपन पूछ लेते हैं इनसे, इसमें क्या हार जाए। गए वहां पर और पूछा तो भगवान तो भूलने वाले थे नहीं, बोलती तो श्रद्धा है, भगवान नहीं बोलते, हमारी श्रद्धा जवाब दे देती है और कोई जवाब देने वाला वहां नहीं होता। तो कोई जवाब देने वाला नहीं था, लेकिन उस साधु की श्रद्धा थी। उसने कहा ऐसा करते हैं, एक सिक्का निकाला उसने, इसको उछालते हैं, अगर हेड तो जीत, टेल तो हार, वापिस लौट जाएंगे, कौन मरने जाएगा, भगवान ही फैसला करे दे रहे हैं। उछाला, हेड, जीत तय है। सारे सैनिकों में हर्ष छा गया कि जब भगवान के यहां पर सिक्का गिरा और उसमें हेड आया है और जीत निश्चित है तो चलो। और सब गए, आप आश्चर्य करेंगे कि इतने शक्तिशाली राष्ट्र से वो लड़ करके लौटे और जीत करके लौटे एक हफ्ते के अंदर। और लौटे तो फिर साधु ने कहा कि उसी रास्ते से चलो, भगवान को धन्यवाद देते चलेंगे कि तुमने कह दिया था इसलिए हम जीत गए, वरना तो हम हार ही गए थे। और जब वापस लौटे तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े सब धन्यवाद दे रहे हैं। इतने में जोर से हंसा वो साधु और उसने सिक्का निकाला और कहा कि देखना चाहोगे सिक्का? सिक्के में दोनों तरफ हेड था, जो गिरेगा हेड ही गिरेगा, हमारी तो जीत हुई है। सिक्के से और किसी से जीत नहीं हुई है, न भगवान के कहने से जीत हुई, जीत हमारे एटीट्यूड से हुई, जीत कि हम जीत करके लौटेंगे इस विचार से हुई है। ये हमारा जो सोच था उसी ने हमें जिता दिया। क्यों ना हम ऐसा सोच अपने जीवन में डेवलप करें, ऐसा विचार हम बनाएं, चीजों को ठीक ठीक हम देखें और उनका ठीक ठीक उपयोग करें तो हमारा जीवन बहुत बेहतर होगा। अभी हम चीजों को ठीक ठीक उपयोग नहीं करते हैं, अपने जीवन का भी ठीक उपयोग नहीं करते हैं, कई जगह तो मिसयूज करते हैं, अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का। जिस मन से अच्छा सोचना चाहिए उससे गंदा सोच लेते हैं, जिन इंद्रियों का उपयोग ठीक ठीक करना चाहिए उनका दुरुपयोग कर लेते हैं, जिस शरीर से तपस्या कर लेनी चाहिए उसको भोग विलास में लगा देते हैं। किस वजह से? एटीट्यूड की वजह से। अगर एटीट्यूड ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा चेंज करिएगा, जैसा भगवान ने कहा उस पर विश्वास करके, एक बार सच्ची श्रद्धा करके और अपने मार्ग को प्रशस्त करिएगा। हम भावना भाते हैं कि हमारा मार्ग प्रशस्त हो, हम मोक्ष के मार्ग पर बढ़ें और मुक्ति पाएं। इसी भावना से बोले आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज।
महाराज जी के अमृतमय वाणी के सदुपयोग से
हे गुरु
निवेदन कर रहे और ज्यादा दिन का बोलो जल्दी बोलो तो फिर जल्दी बोलो।
पूरे समाज की इस मनोभावना को महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करना चाहते हैं कि जब महाराज जी समदगढ़ से लौटे तब रास्ते में हम लोग सब उन्हें इसी तरह हाथ जोड़े मिलेंगे, वे हमें और समय दें।
रुकना चाहें तो रुके,
हम सबकी प्रार्थना पर वे यहाँ रुके।
अच्छी
ऐसा हम लोगों की हार्दिक इच्छा है।
अभी से कह दें क्या?
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है, जग की न स्वर पाका सच्चा जग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर काफिल
अथवा वग शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो
करते तपशैल नदी तट पर कल कल वर्षा की घड़ियों में
समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में तर टूट पड़े किल जावे अंतर की कलियां
तुम सादानी क्या कोई हो जग को देनी जग की निधियां
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनाश्वर मणियां त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम
उदक चंदन कांदुल पोष गई चरु सुदीप सुधूप आग गई कमल मांगल गान गवा खुले मम गए मुनि राज
नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को पर भाष वे को मनु सेवा कनी है द्रव्य जान वे को बंद वे देवान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है ताए वे को जीवों के जताए वे को काम न सताए वे को भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख वे स्तार वे को मेरी दिन वाणी है।